अध्याय 6। अल्लाह तेरी मस्जिद अव्वल बनी। राजघाट पर पुराने किले के खंडहर में पड़ी ब्रिटिश फौज की छावनी में सुबह होते ही तहलका सा मच गया। सभी भयभीत हो उठे। बात भी असाधारण थी। रात को 10 बजे अंतिम राउंड लगाकर स्थानीय सैनिक टुकड़ी के सर्वोच्च अधिकारी मेजर बकले भले चंगे अपने शिविर में सोने गए, परंतु सुबह अपनी कुर्सी पर मरे पाए गए। मेजर बकले अभी बिल्कुल तरुण थे और अपने अफसरों तथा मात हतो दोनों के प्रिय पात्र थे। इस बार छुट्टी में घर जाने पर उनका विवाह भी होने वाला था। ऐसे सुखी आदमी द्वारा आत्महत्या की बात की तो कल्पना ही नहीं थी, इसलिए लोग मेजर की मृत्यु में किसी रहस्य की कल्पना कर रहे थे। उनके शरीर पर किसी प्रकार के अस्त्र शस्त्र का घाव भी नहीं था। बाहर पहरे पर खड़े संतरी का बयान था, मेजर साहब रात बहुत प्रसन्न थे, प्याले पर प्याला चढ़ाए जा रहे थे और भर्राए गले से व्हेन सैली केम इन टू द गार्डन, उपवन में जब सैली आई, ऐसा गाए जा रहे थे। एक बार बाहर आकर मुझसे कहा कि मैं एक जरूरी पत्र लिखने जा रहा हूँ, तुम राउंड लगाने में खड़बड़ करके डिस्टर्ब मत करना। फिर वह भीतर जाकर पत्र लिखने लगे। 12 का घंटा बजने के ठीक बाद ही एक बार भीतर क्लेरा क्लेरा कहने की आवाज आई और किसी चीज के गिरने का धमाका हुआ। फिर सब शांत हो गया। मैंने समझा कि मेजर साहब नशे में शायद कैम्बेट शिविर सया पर गिर पड़े और फिर चुपचाप सो गए। मेजर के कैंप में उनके उच्च सहयोगी उनकी लाश के इर्द गिर्द कुर्सियों पर बैठे थे। मिलिट्री सर्जन ने 100 परीक्षण के पश्चात हृदय की गति बंद हो जाने से मृत्यु की घोषणा कर दी। कप्तान गोवर ने यथासंभव मुख मुद्रा विषाद मलिन बनाते हुए कहा, इस ट्रेजेडी में इतनी ही संतोष की बात है कि इसे अपनी वागदत्ता के विश्वासघात का कड़वा प्याला नहीं पीना पड़ा। लेफ्टिनेंट हिल ने अपनी काहिल आंखें गोवर की आंखों से मिलाते हुए आश्चर्य भरे स्वर में पूछा, अच्छा? हाँ, गोवर ने कहा, आज ब्राइंटन से मेरे एक मित्र का पत्र आया है। वह एमपी है। उसी ने क्लोरिसा कीटिंग से ब्याह किया है। जो चिट्ठी लिखते लिखते मेजर मरे हैं, उसे पढ़ना चाहिए, शायद हृदय की गति बंद होने के कारण का पता चल जाए। फौजी सर्जन ने कहा। गोवर ने भी स्वीकृति दी। हिल ने टेबल पर से चिट्ठी उठा ली और उसे रुक रुक कर पढ़ने लगा। फोर्ट राजघाट बनारस सितंबर 1858। मेरे हृदय की रानी, बेसलियन मिशन के फादर मोनियर के हाथ तुमने जो चिट्ठी भेजी थी वह मुझे मद्रास में ही मिल गई, परंतु मुझे उसी वक्त कर्नल नील के साथ उत्तर भारत के लिए रवाना होना पड़ा। तुम ही समझो वह मेरा कितना बड़ा दुर्भाग्य था कि तुम्हारा चीर प्रतिशिक्षित पत्र मेरे हाथ में हो और मुझे उसे खोलने तक का अवकाश न मिले। फिर भी मैंने उसे बार बार चूमा, मगर किट्स की तरह मैं भी यह नहीं बता सकता कि चुम्बनों की संख्या 4 थी या 1 औड़ी। फिर इस समय भी पूर्वा हवा चल रही है, मैं इसे चूम रहा हूँ, शायद मेरा चुम्बन या तुम्हारे पास तक पहुँचा दे। इस गर्म मुल्क में रहने के बावजूद अत्यंत स्वस्थ और प्रसन्न हूँ। गदर बिल्कुल दबा दिया गया। अब हम लोग विद्रोहियों को दंड देने के बहाने हिंदुस्तानियों को ऐसी सीख दे रहे हैं कि वे सैकड़ों वर्ष तक सिर न उठा सकेंगे। सचमुच कर्नल नील बड़ा बहादुर आदमी है। वह जैसा बहादुर है वैसा ही बुद्धिमान। उसने यहाँ सड़क की दोनों पटरियों पर सैकड़ों टाइबर्न बना दिए हैं। लंदन में वह स्थान जहाँ उन दिनों में मृत्यु दंड प्राप्त अपराधियों की सजा सार्वजनिक रूप से कार्यान्वित की जाती थी, वह अपने साथ फौज और रस्सियों के हजारों टुकड़े लेकर चलता है। सड़क पर जहाँ कोई नेटिव दिखाई पड़ा कि फिर उसकी खैर नहीं, वह बूढ़ा हो या जवान, परंतु पकड़ लिया जाता है। रस्सी के एक टुकड़े से उसका हाथ पीछे बांध दिया जाता है और दूसरा टुकड़ा गले में बांधकर सड़क के किनारे किसी वृक्ष की डाली से उसे लटका देते हैं। यह वस्तुतः मजेदार चीज होती है। ऊपर हवा में 5 मिनट अद्भुत नृत्य होता है और नीचे हम लोग इन ऑनर ऑफ ओल्ड इंग्लैंड 3 चीयर्स देते हैं, 3 बार हर्ष ध्वनि करते हैं। कल्पना करो और इस दृश्य का मेरी ही तरह आनंद लो। फौज की एक टुकड़ी के साथ मुझे यहाँ छोड़ कर्नल नील कलकत्ता गया है। हम लोग यहाँ एक खंडहर में रहते हैं जिसे यहाँ वाले अब तक किला ही कहते हैं। यह शहर भी अजीब है, यहाँ के बहुत पुराने नगरों में है। मुसलमान जिस पूज्य दृष्टि से मक्का, यहूदी फिलिस्तीन और ईसाई यरूशलेम या रोम को देख देखते हैं, इस नगर के प्रति हिंदुओं की दृष्टि उससे भी अधिक श्रद्धा संपन्न है। मेरे एक सिविलियन दोस्त ने मुझे बताया कि यहाँ के लोग बड़े ही टर्बुलेंट अर्थात दुर्दांत हैं। वे गंभीर बातों पर विज्ञतापूर्ण दृष्टि से मुस्कुराते हैं और छोटी छोटी बात पर लड़ मरते हैं। गत सप्ताह की बात है, मेरी रेजिमेंट का कॉर्पोरल बिल्स रात में चुपके से शहर चला गया था। यहाँ ब्रिटिश सैनिक प्रायः रात को छावनी से भाग जाया करते हैं। हम अफसर लोग भी इसमें कोई अन्याय या अनीति नहीं समझते, मानव स्वभाव को कुछ छूट देनी ही होगी। खैर, सवेरे बिल्स भटक कर नगर के इंटीरियर अर्थात भीतरी भाग में जा पहुँचा। यहाँ यह बात जान रखनी चाहिए कि यहाँ की गलियाँ बड़ी ही तंग, गंदी और बड़ी ही चक्करदार हैं। ऐसी ही एक गली में घुसकर बिल्स ने देखा कि एक दुकान पर छोटी छोटी गोल गोल पीली पीली कई चक्कर वाली कोई मिठाई एक बहुत बड़े बर्तन में भरे हुए रस में तैयार होती है। एक आदमी लोहे के किसी लंबे औजार से उन्हें उसमें उलट पुलट कर बाहर निकाल एक दूसरे बर्तन में रखता जाता है। बिल्स को भूख लगी थी, उसने पैसा निकालने के लिए एक हाथ पैंट की जेब में डाला और दूसरा हाथ मिठाई पर। बेचारे के दोनों हाथ फंसे थे। इतने में ही मिठाई वाले ने उसे गरम रस में सने लोहे के औजार को बिल्स के सिर पर मारा। बिल्स सिर बचा गया, परंतु औजार कनपटी पर पड़ा और उसका कान कट गया। कोई नेटिव अर्थात भारतवासी होता तो घबरा कर वहीं ढेर हो जाता। उसने रिट्रीट अर्थात पलायन, इसे रिट्रीट तो नहीं कह सकते, इस प्रकार शॉटी कावेबाजी से काम लिया और गलियों का व्यू भेते हुए छावनी वापस आ गया। परंतु फिर बाद में वह उस गली को ना पहचान सका जहां उक्त दुर्घटना हुई थी, नहीं तो हम लोग हलवाई को कच्चा ही चबा जाते। प्रिय, पत्र लंबा हुआ जा रहा है, पर क्या करूं, लिखने का अवसर भी तो कम मिलता है। अब तक मैंने औरों के बारे में लिखा है, अब कुछ अपने बारे में लिखूंगा। जैसा मैं पहले लिख चुका हूँ, यह देश बड़ा विचित्र है और उसमें भी इस बनारस का तो कहना ही क्या। यहाँ आकर मैं भयंकर उलझन में फंस गया हूँ। हैमलेट में किंग ऑफ डेनमार्क का प्रेत जैसे अपनी कब्र से निकलता है, सही यहाँ एक बुढ़िया भी गोर से बाहर निकलने के लिए बेचैन है। आधी रात होते ही वह कल कब्र से बाहर निकली थी, जिसे छोटी सी मस्जिद में उसका मजार है, वह भी उसकी बनवाई हुई है। 2 बजे रात तक मस्जिद के खुले सहन में वह टहलती और गाती रही। सब तो समझ में नहीं आया, लेकिन गीत की पहली पंक्ति स्पष्ट सुन पड़ी, अल्लाह तेरी मस्जिद अव्वल बनी। प्री क्लेरा, पढ़कर चौंकना मत, यह औरत बेतरह मेरे पीछे पड़ी है। यह जानकर डरना भी मत कि मेरे ही हुक्म से परसों सुबह 6 बजे इसे गोली मारी गई थी। यह बड़ी विचित्र औरत थी, इसकी कहानी मैं तुम्हें सुनाता हूँ, इससे तुम समझ सकोगी कि नेटिव अर्थात देशी औरतें लव अफेयर्स प्रेम परपंच में कितनी बुद्धिहीन होती हैं। सच तो यह है कि इन्हें प्रेम करना और उसे निभाना आता ही नहीं। इस औरत का नाम रकिया था और मृत्यु के समय उम्र 58 साल, यह मुल्तानी नाम से भी मशहूर है। अपने एक लव इंटरिंग में इसे अपनी नाक गंवानी पड़ी थी, इससे इसकी आकृति बड़ी भयावह हो उठी। इसके बारे में मुझे जो पता लग सका है उसके अनुसार यह लड़कपन में ही किसी को दिल दे बैठी थी, परंतु वह आदमी इसकी पहुँच से बहुत ऊँचे था। विवाह की तो बात ही क्या, वह उसके सामने भी नहीं पहुँच सकती थी। दूसरी ओर स्वभाव से अमाजान होने के कारण इसने किसी भी पुरुष से विवाह कर सहचरी का परावलंबी पद ग्रहण करना स्वीकार नहीं किया। सुनता हूँ उसके पास प्रचुर रूप था, बड़े बड़े लोग उसे पत्नी का सम्मानित पद देना चाहते थे, परंतु उसने सबका प्रस्ताव ठुकरा दिया और स्वेच्छा से अनैतिक जीवन बिताती रही। तुम्हें सुनकर आश्चर्य होगा कि वह औरत भी झांसी की रानी की तरह गदर को आजादी की लड़ाई मानती थी, इसलिए गदर के दिनों में यह फैनेटिक अर्थात हिंच और कट्टर हो उठी थी। यद्यपि बनारस में गदर का जोर नहीं था, परंतु कुछ अंग्रेज अधिकारियों की कमजोरी से बड़ी गड़बड़ी मची, अंग्रेजों में भगदड़ पड़ गई। वे नावों पर बैठ बैठ कर चुनार की ओर चले। इस नगर की यह भी एक विचित्रता है कि यहाँ पर हमारा राज्य होते हुए भी एक दूसरा आदमी यहाँ का राजा कहलाता है। सुना है, परंतु सबूत नहीं मिलता कि इसी राजा के बाप ने अपने किले के नीचे नदी में अंग्रेजों से भरी कई नावें डुबा दी। हम लोगों ने उसे फांसी दे दी होती, परंतु जैसा कि कह चुका हूँ सबूत नहीं मिलता। उस घाट पर डूबने वाली अभागी नौकाओं में से एक मिस्टर ब्रेटले नामक एक अंग्रेज व्यापारी का भी परिवार था। बनारस में उन्होंने मुल्तानी को अपने बच्चे की आया नियुक्त कर रखा था। उस परिवार की अंतिम यात्रा में मुल्तानी भी उनके साथ थी। नाव डूबी परंतु वह बच गई। यह एक बार भी कह देती कि अमुक व्यक्ति की आज्ञा से नाव डुबाई गई और तट की ओर तैरने वालों पर गोली चलाई गई तो हमारा सारा काम बन जाता। लेकिन रखिया बड़ी जिद्दी औरत थी। सभी वैज्ञानिक यंत्रणाएं दी गईं, परंतु उसका एक ही जवाब था, मैं नहीं जानती नाव कैसे डूबी। सुना था उसी नाव पर झालर नाम का एक हिंदू पुरोहित भी सवार था। वह बहुत खोज करने पर गिरफ्तार किया जा सका। यहाँ के हिंदू पुरोहित साधारणतया बहुत तगड़े बातूनी होते हैं, परंतु झालर अत्यंत दुर्बल और मूढ़ निकला। उसे यह भी नहीं याद कि उसकी नाव कभी डूबी भी थी। लाचार होकर उसे रिहा करना पड़ा, लेकिन वह औरत उसका रोवा रोवा विद्रोही था। जीवन भर रखिया समाज विद्रोह कर जीती रही और अंत में राज्य विद्रोह पर मरी। बनारस से होकर जाने वाली विद्रोही सेना के स्वागत में इसने बनियों को भड़काकर कुओं में चीनी भरे बोरे डालकर शरबत तैयार कराया था। इतनी ही बात पर इसे 100 बार गोली मारी जा सकती थी, परंतु बड़ी मछलियां हाथ लग सकें, इसलिए मैंने इसे बहुत समझाया कि राजा के बाप प्रसिद्ध नारायण सिंह के बारे में तू जो कुछ जानती है सचमुच बता दे, मैं तेरी जान बचा दूंगा। मेरी बात सुनकर उसने कोई जवाब नहीं दिया, खड़ी खड़ी मुस्कुराती रही। उसके नाक कटे मुंह पर वह मुस्कान सचमुच बड़ी भीषण थी। दोपहर का समय था, चारों ओर सशस्त्र संतरियों की भीड़ थी। फिर भी एक बार मैं डर गया, तथापि मैंने अपनी बात जारी रखी। आखिर मेरी बात सुनते सुनते वह तैश में आ गई। अपना शैतान चेहरा और भी भीषण बनाकर उसने कहा, कैसी बात करते हो साहब, कुछ देर के लिए तुम अपने को औरत समझ लो, फिर सोचो कि जब तुम 10 बरस के थे उस समय किसी ने तुम्हारी जान बचाई, उसी दिन तुमने उसे दिल दे दिया, सारी उम्र उसी की याद में बिता दी, आखिरी उम्र में किसी ने तुमसे उसके खिलाफ गवाही देने के लिए कहा, अब तुम ही कहो क्या तुम सचमुच बयान दे सकोगे। अपनी जान सबको प्यारी होती है, उसे बचाना कौन न चाहेगा। मैंने कहा, 7 समुंदर 13 नदी पार तुम्हारे देश में ऐसा होता होगा, लेकिन यहाँ तो कोई जहांगीर भी आए और उसके खिलाफ मुझसे कुछ कहलाकर मुझे नूर जहां भी बनाना चाहे तो मैं भी तख्ते हिंदुस्तान को ठोकर मार दूं। इस बेहुदा और बदसूरत बुढ़िया को अपनी तुलना नूर जहां से करते सुनकर मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा, क्या जान बचाने के लिए भी नहीं, जान जान क्या करते हो, जान तो एक दिन जाएगी ही। उसने शेरनी की तरह दहाड़ते हुए कहा। मुझे भी उसकी गुस्ताखी पर गुस्सा आ गया। मैंने कहा, तुम्हारी जान कल ही जाएगी, सुबह ठीक 6 बजे गोली मारकर प्राण दान के सिवा जो इच्छा हो बताओ, पूरी कर दी जाएगी। मेरी कोई इच्छा आज तक पूरी नहीं हुई, कोई कर भी नहीं सका, तब तुम क्या करोगे। फिर भी उसने अपनी बनवाई हुई मस्जिद की ओर इशारा करते हुए कहा, अगर तुमसे हो सके तो मुझे जुमेरात तक जीने दो। मैंने यह मस्जिद बड़े चाव से बनवाई, लेकिन कूड़ मगज मुल्ला ने फतवा दे दिया कि कसब की कमाई से बनी मस्जिद में मुसलमान को नमाज न पढ़ना चाहिए। खैर कोई बात नहीं, मुझे 2-4 रोज और जीने दो, जुमेरात को मैं वहाँ नमाज पढ़ लूँ। उसी दिन ईद है, अपनी मस्जिद में मैं खुद रत जगा कर लूँ, फिर सुबह तक तुम खुशी से गोली मार देना। उसी मस्जिद में मैंने अपनी कब्र भी तैयार करा रखी है। अब कुछ नहीं हो सकता, हुक्म बदला नहीं जा सकता। मैंने कहा, तब तुमने मेरी ख्वाहिश क्यों पूछी, झूठे कहीं के। लेकिन तुम भी इतना जान रखो कि मैं ईद की रात अपने मस्जिद में जरूर नमाज पढ़ूंगी और जरूर जरूर रजग्गा करूंगी, तुम मुझे रोक नहीं सकते। उसने कहा और इसके बाद हंसते हुए अल्लाह तेरी मस्जिद अव्वल बनी गाते हुए वह सिपाहियों के पहरे में हवालात चली गई। परसों सुबह उसे गोली मार दी गई, उसे मिट्टी भी दे दी गई। फिर भी जैसा कि मैं ऊपर लिख चुका हूँ, वह रात में मस्जिद में टहलने और गाते देखी गई। जिस सिपाही ने मुझे पहले यह खबर दी उसे मैंने डांट दिया, परंतु अपनी आँख और कान पर मैं कैसे अविश्वास करूँ। फ्री क्लेरा, आज ही ईद है, मस्जिद के ठीक सामने अपने कैंप में मैं बैठा हूँ, यह चिट्ठी मैं तुम्हें लिख रहा हूँ। रात के 12 बजना ही चाहते हैं, समूचे कैंप में सन्नाटा छाया हुआ है, हवा साए साए चल रही है, आसमान में चांद नहीं है, तारे खूब खिले हैं। लो संतरी ने 12 का घंटा भी बजा दिया और वह देखो मस्जिद के सहन में नकटी बुढ़िया ने भी चहल कदमी शुरू कर दी। उसके नकिया नकिया कर गाने की आवाज मेरे कानों में आ रही है। अरे आज यह क्या, वह शैतान मस्जिद से निकल कर मेरे कैंप की ओर आ रही है। कितनी जल्दी जल्दी आ रही है वो। लो वह दरवाजे पर पहुंच गई, शायद मेरा संतरी सो गया। क्लेरा क्लेरा मुझे बचाओ, मेरी हालत खराब हुई जा रही है। अरे वह तो कमरे में आ गई, इसका गाना सुनकर मेरा खून पानी हुआ जा रहा है। बंद कराओ मेरा गला घुट रहा है, बंद कराओ इसका यह गाना, अल्लाह तेरी मस्जिद अव्वल बनी।